بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے قاہرہ اور اسکندریہ میں مصر کے صدر محمد مرسی کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپیں. ان جھڑپوں کے پیچھے کون سے محرکات اور عوامل کار فرمائیں, ان کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب ساجد رضوی صاحب کو. ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار جناب غلام اکبر صاحب, اور اسی طرح ٹیلی فون لائن پر بھی کراچی سے سینئر صحافی یحییٰ بن زکریہ صاحب ہوں گے. ان موضوعات پر گفتگو ہوگی مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یہ ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز 24 اگست کو پہلے سے بعض گروہوں کی طرف سے اس بہانے سے اعلان کیا گیا تھا کہ چونکہ مصر میں بجلی کی قلت ہے, توانائی کا بحران ہے, اس لیے ہم حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے. جبکہ محمد مرسی نے بار بار یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اس بحران پر جلد از جلد قابو پا لیں گے, مگر اس کے باوجود مخالفین کے تیور نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوئے, ان کے تیور میں شدت آتی گئی, اور یہاں تک کہ مخالفین نے قاہرہ اور اسکندریہ میں پرتشدد مظاہرہ کیا اور اعلان کیا کہ آج ہم اخوان المسلمین کے دفتر کو آگ لگا کر رہیں گے. کیا اگر کہیں مظاہرہ کیا جاتا ہے کسی مطالبے کو لے کر تو کسی سیاسی جماعت یا کسی پارٹی کے صدر کے دفتر کو اس طرح سے آگ لگانے پر اصرار کیا جاتا ہے, یا ملک میں توڑ پھوڑ تشدد کی جاتی ہے, یا ایک ایسے ملک میں جو ابھی جہاں تازہ تازہ انقلاب آیا ہو, کیا اس ملک میں اس طرح کی لڑائیاں اور جھڑپیں بامانی اور مفید یا مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ جب کل کی صورتحال پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں مشکوکات, مشکوک اقدامات اور مشکوک حرکتیں نظر آتی ہیں, اور بجلی یا توانائی کا بحران تو صرف ایک بہانہ تھا. اس سے پہلے بھی مصر کے مختلف سیاسی تنظیموں, جماعتوں اور انقلابی اتحاد نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ جو مظاہرہ ہونے والا ہے یہ فتنہ انگیزی اور شر انگیزی کے مقصد سے ہے, لہذا اس میں لوگ شرکت نہ کریں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو محمد مرسی کی جرات مندانہ کاروائیوں, ان کے جرات مندانہ فیصلوں اور جو ان کی پالیسی ہے خاص طور پر اسرائیل اور استکباری طاقتوں کے تعلق سے, اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور محمد مرسی کی جو آئندہ کی پالیسی ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب غلام اکبر صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
غلام اکبر صاحب, سب کچھ بحسن خوبی, البتہ بڑی تگ و دو کے بعد اور جد و جہد کے بعد انجام پایا, اور محمد مرسی مسند اقدار پر آئے اور عوام کے ایک منتخب صدر کی حیثیت سے اس وقت مصر کے ایوان صدر میں موجود ہیں, جو گزشتہ چند عشروں کے دوران مصر میں ایک بے مثال واقعہ ہے. کیا یہ چیزیں بعض عناصر کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہیں اور ان کو گوارا اور برداشت نہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی, آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلیں, اور ابھی تو صدارتی انتخابات سے پہلے پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے, اس سے بھی پہلے چلیں تو عرب اسپرنگ کے نام سے ایک فریز قائم کیا تھا ویسٹ نے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ عربوں میں جمہوریت کی روح جو ہے نا بیدار ہو گئی ہے اور وہ انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ویسٹ کی نظروں میں انقلاب یہ تھا کہ سیکولر فورسز, اور وہ اسے کہتے تھے یہ فیس بک اور ٹویٹر والی جنریشن جو ہے, جو بنیادی طور پر روشن خیال ہے, جو بنیادی طور پر مغربی جمہوریت کے حامی ہیں, یہ انقلاب ان کا انقلاب ہے. لیکن بعد میں جب انتخابات ہوئے تو اس میں ویسٹ کے تمام اندازوں سے بالکل برعکس, دو اسلامی جماعتیں جو ایک اخوان المسلمین اور ایک سلفیز جو تھے, انہوں نے تقریباً 70% سے اوپر ووٹ لیا اور نشستیں حاصل کی, اور آئین بنانے کا اختیار جو تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, مطلب ان کو انہوں نے آئین بنایا تھا. اب آپ مصر کی ڈائنامکس کو دیکھیں तो आप 1950 से जब फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट नासिर का जो इनकलाब आया था उसके बाद शुरू शुरू में तो नासिर ने पहला साल जो था ना उसने इस्लाम का नाम लिया था। इस वजह से लिया था कि उस वक्त इख्वानुल मुस्लिमीन जो थी वो उनके साथ अलायंस थी और इख्वानुल मुस्लिमीन एक बड़ी ताकत उस वक्त बनती नज़र आ रही थी। लेकिन बाद में जैसे रशिया का और सेकुलर फोर्सेस का असर सूख बढ़ा तो नासिर जो थे ना वो नेशनलिज्म की तरफ, अरब नेशनलिज्म की तरफ चले गए और उसके बाद पूरी तारीख जो है मिस्र की जो है वो उसमें फौज जो है उसकी उसको डी इस्लामाइज किया गया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। ये वेस्ट ने जहाँ भी वेस्ट के नेशनलिज्म चला है और इस्लाम और नेशनलिज्म का बुनियादी तौर पे एक तजाद है तो नासिर के बाद फिर जब अनवर सादात आए तो वो अमेरिका के पिट्ठू थे। इसमें तो किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है क्योंकि उन्होंने कैंप डेविड कराया, इसराइल के साथ उन्होंने माहदा किया और तारीखी दुश्मनी जिसकी बुनियाद इसराइल ने रखी थी 1967 में। मैं समझता हूँ कि ये माहदा बजाते खुद यानी अल कुद्स को आज़ाद कराए बगैर किसी किस्म का भी माहदा जो था ना अरब दुनिया के लिए बायस शर्म था और वो हज़म करना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने इस माहदे को न सिर्फ ये के स्पॉन्सर किया बल्कि उसको फाइनेंस भी किया। 40 अरब डॉलर जो है ना वो हुस्नी मुबारक बाद में हुस्नी मुबारक आ गए और उनकी हुकूमत को मजबूत करने के। लेकिन
जी
जब पिछले 18 महीने पहले जब अरब स्प्रिंग, सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग जिस साल तहरीर का जो इनकलाब था जब उसको पैमाने पे नापा गया बैलेट बॉक्स के तो पता लगा कि ये इस्लाम की वापसी है।
जी
मिस्र
यकीनन
में इस्लाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ बोला और 70% जो था लोगों ने इस्लाम को वोट दिया। अब यह सूरत हाल मगरब के लिए नहायत परेशान कुन थी इसलिए उन्होंने जो मिलिट्री काउंसिल थी वो उनकी पिट्ठू थी मैं और जो उनके चीफ थे वो भी उसी दौर की पैदावार थे। शफीक जो थे जो कैंडिडेट मुकाबले में आए थे मोहम्मद मुर्सी, और इन्होंने पहले जो स्क्रीनिंग की तमाम जो मजबूत कैंडिडेट अख्वान मुस्लिमीन या दूसरे थे उनको पहले से इन्होंने डिसक्वालीफाई किया। और ये बात सबको मालूम है कि मोहम्मद मुर्सी वाज द सेकंड चॉइस। फिर भी सदारती इंतखाबात जब हुए तो वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर धांधली जो है
जी
उसमें तमाम फोर्सेस यूनाइट हो गई, सेकुलरिस्ट भी यूनाइट हो गए, फौज ने खुलकर हिमायत की कि भाई शफीक की वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभरे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद मुर्सी कामयाब हो गए। अब फौज का ख्याल था उन्होंने अदलिया का सहारा लिया और अदलिया ने पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया और सदर के तमाम अख्तियार जो थे ना वो सलब कर लिए, वो अपने हाथ में, बल्कि फौज ने बाद में वो अपने हाथ में ले लिए और फिर उसके बाद इन्होंने सदारत जो थी ना कबूल कर ली मोहम्मद मुर्सी की। अब यह है कि यह ला फर्स्ट स्ट्राइक की बात है, ये मैं दाद देता हूँ मोहम्मद मुर्सी की, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि वो इतनी तेजी से एक्ट करेंगे। उन्होंने एक्ट किया और तमाम फौज के उन जनरल्स को जो हुकूमत पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखते थे दोबारा उनको उन्होंने निकाल दिया और
बहुत
नई फौज
शुक्रिया,
क्या
बहुत
बतलाया।
शुक्रिया
लेकिन
गुलाम अकबर
अब
साहब, मैं
फिर
फिर हाजिर होंगे
सवाल
आपकी
ये
खिदमत
उठता
में।
है
इजाजत दें मुझे, मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया नवाजी साहब की। साहिद साहब, अभी गुलाम अकबर साहब जो हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और इनकी गहरी नजर है। ट्यूनिस और मिस्र इन इलाकों का काफी दौरा भी कर चुके हैं इससे पहले वो, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी थी। लेकिन चूंकि बहरहाल आप काफी देर से मुंतजर हैं, इसके बाद भी हम इनकी खिदमत में चलेंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बात ये हो रही है जहां गुफ्तगू खत्म हुई है कि मोहम्मद मुर्सी ने तमाम तर जो उनके अंदाजे थे मगरिब के, कामयाबी हासिल की उसके बरखिलाफ, और कोर्ट अदालत और सेकुलर फोर्सेस और फौज की तमाम तर रखना अंदाजियों के बावजूद उन्होंने इख्तदार संभाला और इंतहाई जुरतमंदी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने उन कुवतों को इख्तदार से बेदखल किया, यानी मोहम्मद हुसैन दंतावी या और जो फौज के जो अहदेदारान थे उनको बर्तरफ किया, क्योंकि वो अवामी इनकलाब की उमंगों की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझे जा रहे थे अवाम की नजर में। तो अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया और तंतावी को और जो फौज के सरबरा थे उनको बर्तरफ किया। क्या आप नहीं समझते कि कल का जो वाकया है इसमें मुबारक की बाकियात और फौजी बाकियात जो अनासिर हैं तंतावी के जो हामिल हैं उनकी शरारतें शामिल नहीं थी?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने जो अपने तमहीदी गुफ्तगु थी उसमें भी आपने इशारा किया था और इसमें कोई शक नहीं कि एक इनकलाब जो है वो मिस्र में बरपा हुआ और जमहूरी तरीके से जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुआ और वो जितनी रुकावटें डाली जा सकती थी इस इनकलाब की राह में वो डालने की कोशिश की गई, चाहे वो फौज की तरफ से रही हो, सेकुलर ताकतों की तरफ से रही हो, या वह उन कुव्वतों की तरफ से जो बाहर से जो है वो मिस्र में असरअंदाज हो सकती थी। और पूरी कोशिश थी कि इन इंतखाबात में जो है वो इस्लाम नवाज ग्रुप या धड़ा जिसे कहें या मोहम्मद मुरसी या इनके हम ख्याल अफराद जो हैं वो इख्तदार में ना आने पाएं। और मगरिब को वेस्ट को पूरी पूरी उम्मीद थी और उनके इलाकाई हामी भी जो हैं वो पूरी सरमायाकारी कर चुके थे कि मोहम्मद मुरसी या इख्वानुल मुस्लिमीन की तरफ से या उनके दूसरा ग्रुप जो है सलाफी और उनकी क्यादत जो है वो इख्तदार में ना आने पाए और शफीक जो साबिक उनके लिए पूरी तैयारियां थी और पूरी तवक्कुआत ये जाहिर की जा रही थी कि वो कलमदान जो है संभालेंगे आइंदा हुकूमत का। यानी इसका मतलब ये था कि एक और हुस्नी मुबारक और यानी एक और अनवरुस सादात, एक और मगरबी पिट्ठू। लेकिन बहरहाल उनके तमाम तर अंदाजों के बरखिलाफ जो है वो सूरत हाल जो है सामने आई और ये जो वाकयात हुए, इससे पहले सहरा सीना वाला जो वाकया आया और एक अजीब व गरीब किस्म की कार्रवाई हुई और उसका इल्जाम कभी फलस्तीनियों पर लगाया गया, कभी इनकलाबियों पर, लेकिन हकीकत जो है वो सब जानते हैं उसके बैक पर कौन था, कौन लोग जो हैं ये इस किस्म की शरारतें और इश्तियालंगेजियां कर रहे हैं। और ये वाकया भी मैं समझता हूँ कि पहला और आखिरी वाकया नहीं और ये इस किस्म के वाकयात जो हैं वो आइंदा होते रहेंगे, क्योंकि हुस्नी मुबारक की बाकियात या वो लोग जो पिछले 30-35 बरसों से अमरीका की और सियोनी हुकूमत की खिदमत पर मामूर थे वो सब के सब मौजूद हैं, अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और उनका बहरहाल एक असर नफूज भी है फौज में भी, उनके इंटेलिजेंस में भी, पुलिस में भी, सिक्योरिटी इदारों में भी। तो वो जहां तक उनसे हो सकेगा वो अपनी खदमात जो है अमरीका और इसराइल के लिए पेश करते रहेंगे और इस हुकूमत को जो है जरबा लगाएंगे और अवामी इनकलाब को और जो जमहूरी अकदार वहां पर हकीकी मानों में सामने आ रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे।
जी गुलाम अकबर साहब, आप देखें कि अभी जो सहरा सीना का वाकया पेश आया जिसमें मुतादिद मिस्री बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड के अफराद मारे गए, तो उसमें वाज़े तौर पर जो हाथ है वो इसराइल का है और किसी से बात ढकी छुपी भी नहीं है। अगरचे कोशिश ये की गई कि इसकी निस्बत इस्लाम से दी जाए, इस्लामी क़ुव्वतों से दी जाए, फिलिस्तीनियों से दी जाए, लेकिन सब पे ये बात नुमाया है। और शायद इसी बात को दर्क करते हुए मिस्री हुकूमत ने सहराए सीना में फौज तैनात कर दी, अगरचे कैम्प डेविड मुआहदे में ये कहा गया है कि मिस्र अपनी फौज सहरा सीना में तैनात नहीं करेगा, लेकिन मिस्र ने इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए सहरा सीना में अपनी सिक्योरिटी, अपनी सलामती के लिए फौज तैनात कर दी। और जाहिर है कि यह बात इसराइल को नागवार गुजरी और एक तरह से उस पर वहशत तारी हो गई मिस्र के इस इकदाम से। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो अब कार्रवाई मिस्र के अंदर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है इसमें इसराइल का हाथ नहीं हो सकता?
देखिए, मैं समझता हूं कि इसराइल का हाथ तो यकीनन होगा कि इसराइल तो ने शुरू से ही उनका पहला चॉइस वेस्ट ने भी, आपको पता होगा कि पहले इन्होंने एज एन अल्टरनेटिव टू हुस्नी मुबारक महमूद अलबुरादी को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के अवाम ने उनको घास नहीं डाली। उसके बाद अमर मूसा तक को इन्होंने प्रमोट किया कि भाई किसी तरीके से कोई ऐसी शख्सियत उभर के सामने आए जो अब मिस्र के अवाम को, जो इस्लाम का नाम न ले और मिस्र के अवाम को काबिल कबूल हो। लेकिन ये सारी ख्वाहिशात जो थी ना अमेरिका की और इसराइल की वो पूरी नहीं हुई। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो दौर था, ख़ासतौर पे हुस्नी मुबारक का दौर, 30 साल दौर जो था, इसमें फौज के अंदर इतना उसका असर सूख बढ़ चुका है कि अब वो किसी वक्त भी एक काउंटर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर सकती है। फौज के अंदर इतना एलिमेंट, अगरचे अपने मोहम्मद मुर्शिद ने जो अपनी मर्जी की फौजी क्यादत सामने लाए हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि ये अपनी मर्जी की जो फौजी क्यादत, ये भी उसी क्यादत का हिस्सा जो पहले मौजूद थी। जनरल का इंतखाब भी, अब किसी को ये अंदाजा नहीं है कि वहाँ जो आउस्टेड क्यादत है यानी तंतावी वगैरह का कितना असर रसूख है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी दिलेरी से उन्होंने इस फौजी क्यादत को हटाया है, अगर उतनी दिलेरी से उन्होंने पर्ज अब स्टेज आ गई है कि जो पर्ज ईरान ने की थी, और मैं समझता हूं कि इसकी इत्तदाद जब भी रेवोल्यूशन आता है तो उसमें एक कल्चर रेवोल्यूशन की भी जरूरत होती है। आपको ये माओ की बात है, रेड रेवोल्यूशन के साथ एक कल्चर रेवोल्यूशन आया था, और ये ईरान में भी एक कल्चर रेवोल्यूशन आया, खुमैनी मरहूम ने वो एक कल्चर रेवोल्यूशन, वो अब मिस्र में भी एक कल्चर रेवोल्यूशन आना चाहिए, और ताकि ये जो एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कोनों खुदरों में वहाँ छुपे होंगे, फौज के अंदर भी होंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे, उनको पर्च किया जाए और कम अज कम की पोस्ट पे ऐसे लोग लाए जाएं जिनकी वफादारियाँ और जिनकी फेथ जो है उस पर भरोसा किया जा सके। क्योंकि अब लड़ाई बरह रास्त मिस्र की जो है वो इसराइल से है, क्योंकि इसराइल जो है उसके लिए किसी सूरत में भी मिस्र में इस्लामी हुकूमत जो है वो अनअफोर्डेबल है, वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और वहाँ अभी राइटिस्ट गवर्नमेंट है, और किसी वक्त भी वो कोई भी फैसला, उन्होंने ईरान को भी धमकियाँ देनी शुरू की हुई हैं, जैसे एक ऐसी फिजा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी वक्त भी ईरान पे हमला कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये खुदकुशी होगी इसराइल की, और ईरानी सदर ने बिल्कुल सही कहा है कि इसराइल को ख़त्म होने के लिए एक वार की ज़रूरत है, और ये शायद अगर वो आज के जो इसराइल के लीडर हैं, अगर वो अपने बानी के जो बिन गोरिया ने एक तकरीर की थी, उन्होंने कहा था इसराइल पहली जंग जीत जाएगा, दूसरी जीत जाएगा, तीसरी जीत जाएगा, लेकिन उसे हारना एक दफ़ा है और वो उसका नामो निशान मिट जाएगा, इससे पहले कि वो वक्त आए वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर ले। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसराइली जो हैं वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील, उनके ये जो मिस्र का इनकलाब है ये उनको दूसरा बड़ा धचका है, पहला बड़ा धचका ईरान का इनकलाब था। अब मिडल ईस्ट में दो बड़ी ताकतें जो हैं ईरान और मिस्र, अगर दोनों इस्लाम के आगोश में चली गई हैं तो इसराइल अपना मुस्तकबिल मखदूश देख रहा है।
यकीनन ऐसे ही
है, इस बात से पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि अब जो भी साजिशें होंगी इसराइल जो है वो अब पूरी कोशिश करेगा कि इस हुकूमत को अपने कदम जमाने का मौका न मिले, और ये जो सिकंदरिया वगैरह में जो भी फसादात हुए हैं इसको फाइनेंस किया गया होगा। लेकिन ईरान में भी इन्होंने ये फसादात कराने की कोशिश की थी जो नाकाम हुई, यानी वो हर जगह जमहूरियत के नाम पे वो ऐसे फोर्सेस को फाइनेंस करते हैं जो इंकलाब के मुखालिफ होती हैं।
ये बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिराजरूंगा कहूंगा क्योंकि चलते हैं इस वक्त कराची जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सरकर्दा तर्ज निगार जनाब यहिया बिन जकरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यहिया बिन जकरिया साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं
जी? आपकी आवाज नहीं आई मुझे
जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
यहिया बिन जकरिया साहब, अभी गुफ्तगू हो रही थी इस्लामाबाद स्टूडियो में, हमारे मेहमान थे गुलाम अकबर साहब, मिस्र के तनाजुर में गुफ्तगू हो रही है। कल मिस्र के मुख्तलिफ शहरों में जुमला काहिरा और इस्कंदरिया में बाज अनासिर की तरफ से फसादात बर्पा करने की कोशिश की गई, और कहा जा रहा है कि अब मोहम्मद मुर्सी के आने के बाद मिस्र और इसराइल आमने सामने हो चुके हैं। चुनाचे चंद दिनों कबल आपको याद होगा कि सीनाई के इलाके में जो 20 के करीब बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड को हलाक किया गया मिस्र के, उसमें इसराइल का बराह रास्त हाथ था, और फिर मिस्री फौज ने सहराए सीना में अपनी फौज तैनात कर दी। अब मिस्र के इस इकदाम के बाद इसराइल जो पसोपेश में मुमतला था, कल के वाकयात में कहा जा रहा है कि उसका हाथ है, जब बाज अनासिर ने यह कोशिश की कि इख्वानुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर हमला करके उसको आग लगा दें, क्या आप समझते हैं कि ये मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत को नाकाम करने या कमजोर करने की एक साजिश नहीं है, या खालिस्तन एक अवामी मुतालबा है ये?
देखिए, एक बात बिल्कुल दुनिया का उसूल है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसे वक्त दिया जाता है, और अमलन मिस्र में जो इंतखाबात के बाद हुकूमत कायम हुई है वो एक मामूल के इंतखाबात के बाद की हुकूमत नहीं है, बल्कि एक इनकलाब के बाद इंतखाबात के जरिए कायम होने वाली हुकूमत है। और ये बात बिल्कुल वाजे है कि जो मिस्र में जो 50 साल से 1952 के फौजी इनकलाब के बाद से जो तबका हुकूमत कर रहा था उस भी, और वहाँ के जो मगरब जदा और सेकुलर तबके ने, फिर अमरीका ने, और इसराइल तो बिल्कुल वाजे है, किसी ने भी इस इनकलाब को खुश दिल के साथ कबूल नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्र के अंदर मुस्लिमों के मोहम्मद मुर्सी सदर मुंतखब हो गए हैं, वो भी एक मुफ्तल एक कश्मकश के नतीजे के अंदर सामने आए हैं और उनकी हुकूमत को किसी तरीके से कबूल नहीं किया गया है। और इससे जो चीज हमारे सामने आई है वो ये जदीद दौर के अंदर जितने भी जो सेकुलर पुर है, जो आलम इस्लाम पर गालिब है, वो खुद अपने नजरियात के तकाजों को भी पूरा करने के लिए अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस एतबार से जो कुछ हो रहा है वो कोई गैर मुतवक्का नहीं है, लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतने ऊंचे तरीके से एक इंकलाब के बाद कायम होने वाली अक्सरियत जमात की हुकूमत को नाकाम बनाने की वो कोशिश करेंगे। असल मसला मेरा ख्याल ये है कि इसका एक पस मंजर ये है कि मशरक़ वुस्ता अलमी कश्मकश का मरकज है और मिस्र मशरक़ वुस्ता का मरकज है, और हमें ये याद है कि जो है वो साबिक अमरीकी सदर बुश के दौर में कॉन्डोलिज़ा राइस ने यह बात कही थी कि एक नया मशरक़ वुस्ता जन्म लेने वाला है, ने कोई मंसूबाबंदी की थी जिसके नतीजे के अंदर वो इसराइल के तहफ्फुज़ के लिए मशरक़ की कोई तश्कील नौ करना चाहते थे, कोई नया नक्शा बनाना चाहते थे, मुख्तलिफ ममालिक को तकसीम करना चाहते थे, लेकिन ट्यूनिस के बाद से जो अरब जमहूरी लहर आई है और उसमें खास तौर पर मिस्र के इनकलाब के नतीजे के अंदर उनके सारे मंसूबे नाकाम हो गए। उस नाकाम मंसूबे के बाद जाहिर है कि मरकजियत जो है वो मिस्र को हासिल है, और अगर मिस्र का इनकलाब मुस्तहकम हो जाता है तो उनके मंसूबे भी नाकाम हो जाएंगे और उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। इस इनकलाब के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की, अभी तो ये साजिशें शुरू हुई है
जी, इतफाक से हमारा टेलीफोनी रब्ता मुनक़ता हो गया, हमारे साथी कोशिश करेंगे फिर से रब्ता बरकरार हो। यही अपने जगह साहब से साजिद रिजवी साहब, आप देखें कि मिस्र इस वक्त दो तरफ से मुश्किल का शिकार या तो है या उसको शिकार करने की कोशिश की जा रही है, एक तो सहरा सीना का जो वाकया पेश आया और दूसरे कल का जो वाकया, तो इससे यह साबित हो गया कि मिस्र जो इस वक्त खित्ते में इनकलाबात का मरकज है, अगरचे इन तमाम इनकलाबात का तो मरकज या इल्हाम जो लिया गया ईरान के इस्लामी इनकलाब से लिया गया, लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में तो देखा यह गया कि जो रिपोर्टें जो शवाहिद जो सबूत सामने आए हैं कि सीनाई का जो वाकया है वो इसराइल के जरिए तो अंजाम दिया गया, लेकिन जो वहां पर अनासिर हैं जो दहशतगर्द अनासिर हैं जिनके ठिकानों पर मिस्र की फौज ने हमले भी किए हैं हेलीकॉप्टरों के जरिए या जमीनी कार्रवाई करके, उनको सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा माली और असलाह जाती मदद मिल रही है, और दूसरी तरफ इसराइल उनको जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो क्या मिस्र के मामले में आप सऊदी अरब और इसराइल को एक साथ देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो इसकी क्या वजह है?
देखें, अगर आप इंतखाबाती अमल जो है मिस्र का कि जिसके नतीजे में मोहम्मद मुर्सी जो है वो बहसियत सदर वहां पर मुंतखब होकर सामने आए, अगर आप उसका जायजा लें और वो इंतखाबी अमल जो शुरू हुआ और उसमें जो मुख्तलिफ बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो धड़ेबंदियां थी और जो उनकी हिमायत में या मुखालफत में या एक सेटअप बनाने के सिलसिले में जो मौसर लोग हो सकते थे या इदारे उनके उसमें देखें, तो वहां पर सऊदी अरब का किरदार जो है वो बिल्कुल नुमाया होकर नजर आता है, और सऊदी अरब जो है वो हरगिज इस माइल नहीं था कि इख्वानुल मुस्लिमीन जो है वो मिस्र में इख्तदार में आए, और उसकी पूरी कोशिश थी कि एक सेकुलर इंतखाबात के जरिए एक आम हुकूमत जो है वहां पर बन के आए, और इंकलाब बेशक आ गया, और उसको इसीलिए वो बहार अरब का जो नाम दिया जा रहा था उसमें कहीं उन्होंने इस्लामी बेदारी का या इस्लामी अनसर की जो है बात नहीं की। अगर आप इस पूरी तहरीक को उठा के देखें तो मगरबी मीडिया मुसलसल पल पल की खबर दे रहा था, लेकिन उस पर कहीं शायद इक्का दुक्का अगर आप देखें कि लोगों के जो अल्लाह अकबर के नारे थे वो बहुत कम सुनाई दिए, यानी इस नमाज जुमा के या नमाज के जो इज्तेमात वहां मैदान तहरीर में जो हुआ करते थे उसकी कहीं कोई कवरेज नहीं दी जाती थी, उन तस्वीरों को बिल्कुल नहीं दिखाया जाता था, और पूरी कोशिश ये की जाती थी कि इसको जो है वो एक इक्तसादी माशी या सियासी इनकलाब जो है जाहिर करके जो है करें, और ये कोशिश पूरी थी और आखिर आखिर तक वो कोशिश करते रहे कि इसको हाईजेक करें। सऊदी अरब, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब जो है इस खित्ते में इस्लामी मुमालिक में निहायत असर व नफूज रखता है, और इस वक्त जो वो किरदार अदा कर रहा है, अगर हम शाम के मसले में उसको जाके देखें द्वीप में, तो नजर आएगा कि शाम में जो है वो सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि जो किरदार अब तक हुस्नी मुबारक अदा करते रहे थे वो शाम में एक पिट्ठू हुकूमत को इख्तदार में लाया जाए, और वही किरदार जो इसराइल के तहफ्फुज़ का इस इलाके में मिस्र ने अपने पिछले 30-32 बरसों में अंजाम दिया है, वही किरदार जो है वो शाम के हवाले कर दिया जाए, ता इनके मिस्र में जो है वो उनकी मर्जी की कोई सेटअप बन जाए और या वहां पर इतने बहरान खड़े हो जाएं कि मिस्री हुकूमत जो है वो इसराइल के खिलाफ, सिहूनी हुकूमत के खिलाफ, या खुद अपने अवाम के या इस्लामी नजरियाती और उस हैसियत में कोई मजबूत और ठोस कदम जो है वो ना उठा सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर 33 रोजा जंग को देख लें तो सऊदी अरब का किरदार वहां बिल्कुल नुमाया नजर आता है कि वहां के मुफ्ती जो हैं वो बार बार फतवे दे रहे थे कि इसराइल के खिलाफ जिहाद करना जो हराम है, इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करना हराम है, इसराइल के खिलाफ सड़कों पर आना हराम है।
अभी यौम कुद्स
और यौम कुद्स के ताल्लुक से उनके यौम कुद्स के हवाले से तो मसला जो है वो ये है कि मुजाहरे वहां पर हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब में जो किसी किस्म के भी मुजाहरे नहीं हो सकते, लिहाजा यौम कुद्स के मुजाहरे भी नहीं हो सकते।
नहीं, नहीं, दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए फतवा,
लेकिन जी हाँ, लेकिन यही मैं कहना चाह रहा था कि लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी उनके फतवे जो है वो आपके सामने है। तो सऊदी अरब का किरदार जो है, मगरिब नमाज रोल है सऊदी अरब का पूरे इस खत्ते में, बावजूद ही कि वहां पर मक्का हरमैन शरीफैन है और उसके बाद वो अपने आप को खादिमुल हरमैन भी कहते हैं, लेकिन अगर उनकी पूरी माजी की तारीख और हालिया किरदार उनका देख लिया जाए तो वो सब मगरिब के मफाद में जो है वो करते नजर आ रहे हैं। अलकायदा हो, तालिबान हो, या इस किस्म की जितनी फोर्सेज इस इलाके में फाल नजर आ रही हैं और बज़ाहिर अमरीका के खिलाफ जो है इकदाम करते नजर आते हैं, कहीं वो अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान में कर रहे हैं, कभी वो यमन में और सोमालिया में करते नजर आते हैं, तो अगर इनका सबका नतीजा देखें तो एक भी आप कार्रवाई या एक भी ऐसा इकदाम नहीं दिखा सकते कि जो उन्होंने अमरीका के नुकसान में अंजाम दिया हो या उनके इकदाम से अमरीकियों ने अपने मफाद में कोई फायदा ना उठाया हो।
जी बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं गुलाम अकबर साहब की खिदमत में। गुलाम अकबर साहब, आप देखेंगे जब से ये तहरीक शुरू, ये तुनिस से जिसका आगाज हुआ, और आपने अपनी गुफ्तगू में इशारा किया कि ये सिर्फ अरब स्प्रिंग नहीं बल्कि इस्लामी उनसुर और इस्लामी जज्बात और इस्लामी मुहरकात नुमाया तौर पर खुलकर सामने आए, और 50 बरस के बाद जब तुनिस की मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाजें आईं तो लोग इस तरह से भागे मस्जिदों की तरफ जैसे उन्हें कोई उनकी खोई हुई गुमशुदा शय मिल गई हो, और जाहिर है कि वहां पर अनहजा पार्टी का इख्तदार में आना इस बात को साबित करता है कि वहां के अवाम ने इस्लामी रुझान रखने वाली पार्टियों को मुंतखब किया। तो सऊदी अरब को बहरहाल ये बात मालूम थी कि अगर यहां पर जैनुल आबदीन बिन अली का तख्ता उल्टा तो इस्लामी रुझान रखने वाली पार्टी बरसर इख्तदार आएगी। इसी तरीके से मिस्र के बारे में भी उसको यकीन था कि अगर हुस्नी मुबारक का तख्ता उल्टा तो इख्वानुल मुस्लिमीन जैसी ही तंजीमें बरसर इख्तदार आएंगी। चुनांचे उसने हर तरह की, हर मुमकिन कोशिश की कि हुस्नी मुबारक का इख्तदार जैसे भी वो बाकी रहे। चुनांचे जब मुकदमात की बात आई तो यहां तक सऊदी अरब की तरफ से दबाव डाला गया कि अगर मुकदमा उन पर चलाया गया और सजा हुई तो हम अपनी ऐड जो मिस्र की हुकूमत को देते हैं वो वापस ले लेंगे वगैरह वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब जो इस वक्त इस्लामी दुनिया का आलमबदार अपने को कहते नहीं थकता और जो ये कहने की कोशिश करता है कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हैं और हम इस्लामी उसूलों के ऊपर कारबंद हैं, तो मिस्र और तूनिस या दीगर जगहों पर वो क्यों इस्लामी जमातों के बरसर इख्तदार आने से खायफ है आपके ख्याल में?
देखिए जी, सऊदी अरब का अगर किरदार आप शुरू से ही ले लें, पहली जंग अजीम के बाद से जब शरीफ मक्का गए और ये ख़ानदान जो है ना वहाँ हुक्मरान हुआ, आराम को कायम हुई, और जब तेल का कंट्रोल जो था ना अमेरिका ने हासिल किया, उस वक्त से अब तक जो है अमेरिकन्स ने अपनी गिरफ्त जो है ना सऊदी अरब पर बड़ी मजबूत रखी है। इस गिरफ्त में कदरे कमी पैदा हुई थी जब शाह फैसल हुक्मरान बने थे, वो एक मैं समझता हूँ कि सच्चे दिल से इस्लाम से लगाव रखते थे, इसलिए यही वजह है कि उन्हें शहीद कर दिया गया। और यानी मुझे तो 100% यकीन है कि ये CIA का काम था। अब सऊदी अरब इस स्टेज पे पहुंच चुका है, मैं नहीं समझता कि जो हवा तुन से उठी थी, जो नसीम वहाँ से चली हवा, वो इजिप्ट गई, लीबिया गई, और वहाँ नाकाबले यकीन, मुझे कभी कभी, मैं कि तुनिस में 10 साल पहले गया था और वहाँ का जो कल्चर देखा था वो इतना वेस्टर्नाइज था कि मुझे यकीन नहीं आता कि वहाँ इस्लाम इतनी शिद्दत के साथ और इतने तयकुन के साथ उभरेगा और सियासी तौर पर एक छा जाएगा। अब जहाँ तक सऊदी अरब का तल्लक है, उसके लिए किसी भी, मैं समझता हूँ अगर मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत जो है ना ये मुस्तहकम हो गई, और इंशाअल्लाह मुझे 100% यकीन है, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये सदी जो है ये इस्लाम के वापसी की सदी होगी। पहले पिछली सदी में ईरान में इस्लाम वापस आया, तुर्की में आ रहा है, मिस्र में आ चुका है, और अभी उसे अपने दिफा की जंग लड़नी है, तूनस में भी आ चुका है, लीबिया में भी मुसलमानों का यानी इस्लाम का अपर हैंड है। तो सऊदी अरब जो है वो इस तब्दीली के इस रुझान से मेरे ख्याल में बहुत देर तक नहीं बच सकेगा। वैसे भी ये ख़ानदान जो है ये अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और एक दिन आएगा जब सऊदी अरब की दौलत जो है वो आलम इस्लाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगी, मुझे इस बात का 100% यकीन है। और मिस्र जो है अगर पावर सेंटर बन गया अरब दुनिया का, जो बनेगा, मुझे यानी मैं नहीं समझता कि अख़वानुल मुस्लिमीन जो हैं अब रिट्रीट में जाएंगे, वो मुकाबला करेंगे सेकुलर फोर्सेस का भी, और सेकुलर फोर्सेस का अगरचे वहाँ की अदलिया पर कंट्रोल है, वहाँ की फौज पर भी कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद ये कंट्रोल तुर्की में भी था, लेकिन आपने देखा कि उर्दुगान ने दोनों को शिकस्त दी। वो किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के जरिए दी या अपनी कुव्वत इरादी के जरिए दी, और मिस्र में भी ये कहानी दोहराई जाएगी। और मैं पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था, ये तीन ममालिक जो हैं ये तीन बड़ी ताकतें हैं आलम इस्लाम की, माजी में भी रही हैं, ईरान, मिस्र और तुर्की। अब इनका में इस्लाम अगर उठा है एक कुव्वत बनकर, एक पॉलिटिकल कुव्वत बनकर, तो इसका मतलब है कि 21 सदी का जो नक्शा सियासी मुझे आगे नज़र आ रहा है उसमें मुझे हिलाल और सितारा जो है ना उसका उरूज दिखाई देता है।
बहुत शुक्रिया,
मुझे 100% यकीन है अब इसराइल अपने दिन जो है वो गिनना शुरू कर दे।
जी सही साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या अब वाजे तौर पर मिस्र और इसराइल इस तरह के जो दो वाकयात हुए सरा सीना का और कल का एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे? क्योंकि जाहिर है कि अभी अहमद अतिया के बयान में देख रहा हूँ, जो मिस्र की फौज के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि सरा सीना के वाकये में वाजे तौर पर मुसाद का हाथ था और मिस्र में जो कुछ हुआ है मिस्र के फौजियों के खिलाफ उसमें इसराइल शामिल था। तो इसके पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि वो इसराइल जो मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के आने के पेश नज़र खायफ था और अब इस तरह की हरकतों के बाद आमने सामने दोनों नहीं आ जाएंगे?
देखें, जिस दिन लोग जो हैं मिस्री अवाम मैदान तहरीर में आए थे उसी दिन जो है वाजे हो गया था कि मिस्र और इसराइल जो है बस उनके आमने सामने आने में बहुत ज़्यादा जो है वो देर नहीं लगेगी, और नतीजतन जो है वो इंकलाब की कामयाबी के बाद जो सूरत हाल सामने वो सामने है। मुख्तलिफ अवामिल ऐसे हैं कि जिसके पेश नज़र जो है वो मिस्री हुकूमत जो है वो इकदामात करने पर मजबूर है, मसलन गैस की सप्लाई जो है यह इसराइली सिफारतखाना है, इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, इस किस्म के, या गजा का बॉर्डर जो है, ये दो तीन अवामिल ऐसे हैं कि जिस पर जो मौजूदा मिस्री हुकूमत जो है वो उसका इसरार है और मुसिर है और ये काम जो है वो करने जा रही है, और ये तीनों चीज़ें अवामिल ऐसे हैं जो रेड लाइन है इसराइल के लिए। और अमरीकियों ने भी जो है वो इसराइली हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, दरपर्दा और आला लान भी, कि वो अपने इन मुआहदात जो हैं उनकी पाबंदी करे वरना उसके लिए जो मुनासिब नहीं होगा। मुमकिन है कि मिस्र की हुकूमत पर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए, इकतसादी माशी और अंदरून खाना जो इस सूरत हाल में सामने आ रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खलफिशार पैदा हों, लोग सड़कों पर आए और तशद्दुद की कार्रवाइयाँ भी जो हैं बहुत मुमकिन है कि जारी रहें और की जाए, लेकिन देखना यह है कि मिस्र की मौजूदा हुकूमत या जो सेटअप जो अवाम की ताकत पर और बलबूते पर आया है, यानी अगर अवाम और हुकूमत में फासला नहीं हुआ तो इस किस्म के बहरानों से जो है मिस्र की हुकूमत जो है बिल्कुल उसी तरह, जैसा कि गुलाम अकबर साहब ने कहा कि ईरान में भी इस किस्म की कार्रवाइयां इनकलाब के बाद हुई और पूरी कोशिश की गई कि ईरान के इनकलाब को पलटा दिया जाए और एक ऐसी हुकूमत यहां पर आ जाए कि जो बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत हो लेकिन अमरीका की फेवर की हो, अमरीका की पिट्ठू हुकूमत हो और बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली जो है वो हुकूमत के हवाले से देखने में ना आए। लेकिन जैसा कि गुलाम अकबर साहब ने कहा, मिस्री हुकूमत को जो है वो सकाफती इनकलाब भी जो है वो उनको लाना होगा, खाली चेहरे बदलने से जो है वो काम जो है नहीं चलेगा कि मिस्र के सदर चले गए, उनकी जगह एक नई हुकूमत आ गई और हुकूमती सेटअप जो वही रहे, वहां पर सकाफती लिहाज से, इज्तमाही लिहाज से, समाजी लिहाज से जो है वो बुनियादी तब्दीलियां अगर नहीं लाई जाती हैं, चूंकि जो अवामी मुतालबा है, जो इस्लामी मुतालबा है, तो उसके नतीजे मुमकिन है कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का जो है वो सामना करना पड़े। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आमने सामने आ गई है इसराइली हुकूमत और मिस्री हुकूमत, तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि दोनों हुकूमतें जो है इस वक्त सामने हैं, और जिस दिन कैम डेविड के माहदे से बाजाबता तौर पर मिस्री हुकूमत निकलने का ऐलान कर देगी, उस दिन देखना होगा कि इसराइल का रद्द अमल क्या होता है और अमरीकियों का रद्द अमल क्या होता है, और हत्ता खुद इलाके में जो उनकी पिट्ठू हुकूमतें हैं जो अब तक इसराइल को मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ पॉलिसियों से, अपने इकदाम से तहफ़ फराहम करती रही हैं, वो क्या रद्द अमल दिखाते हैं।
बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब। कैम्प डेविड माहदे पर बहरहाल आपकी भी गहरी नजर होगी। कैम्प डेविड माहदे में जहां बहुत सी बातें थी, वहां ये थी कि सहराए सीना में मिस्र अपनी फौज तैनात नहीं करेगा। इसके जवाब में मामूली सा सही ये भी एक शिक रखी गई थी कि इसराइल फिलिस्तीनी इलाकों में अपने जुल्म और तशद्दुद को बंद कर देगा, लेकिन गालिबन यही एक शिक ऐसी थी जिसकी सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी की गई। कैम्प डेविड माहदे के बाद की सबसे ज्यादा जो जुल्म और तशद्दुद किया गया वो फिलिस्तीनी और फिलिस्तीनी इलाकों पर किया गया। तो इसराइल तो पहले से ही कैम्प डेविड माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, अब जब मिस्री फौज वहां पर तैनात हो गई तो इसराइल जो है वो वावेला कर रहा है कि मिस्र की हुकूमत कैम्प डेविड माहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो खिलाफ वर्जी तो शुरू से इसराइल की तरफ से हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस तनाजुर में ये समझा जाए कि अब कैम्प डेविड माहदे पर मिस्री हुकूमत की तरफ से नजरसानी का आगाज हो चुका है?
मेरा ख्याल है कि यानी इसराइल के पास ऐसी इतला जरूर होंगी, और इसराइल चाहता है कि 4 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं, ओबामा और रोमनी सामने आ रहे हैं। मिट रोमनी की जो पॉलिसी यह है वो आपको पता है, पिछले दिनों इसराइल के मेहमान भी रहे थे, और इसराइल जो है वो जानता है कि अगर वो कोई भी कदम उठाएगा तो उसको जो भी अमरीकी हुकूमत होगी, खासतौर पर ओबामा, वो फोर्ड नहीं करेंगे, वो इसराइल को बैक करेंगे, इसलिए वो ईरान को भी जंग की धमकियां दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मौका है कि इजिप्ट जो है वो ये कदम उठाए, क्योंकि इजिप्ट के खिलाफ जो अंदरूनी तौर पर साजिश हो रही है, देखिए ना, मुआशी मसाइल जो है, अब ये एनर्जी का क्राइसिस वहाँ जो है, अगर उसको इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि ये क्राइसिस उन्होंने तो नहीं पैदा किया, उन्हें तो अभी चंद ही हफ्ते हुए हैं कि उन्होंने इकतदार संभाला है, बल्कि असल इकतदार तो उस दिन संभाला जब उन्होंने फौज की क्यादत को डिसमिस किया है
जी।
तो उनको एक प्लस पॉइंट चाहिए, और वो प्लस पॉइंट यही हो सकता है कि अब बाजाबता तौर पर कैम्प डेविड से वॉकआउट करे इजिप्ट, और अगर वो वॉकआउट कर गया तो इजिप्ट के, आपको याद होगा नासिर कैसे हीरो बना था सुएज कैनाल का, उन्होंने यकतरफा तौर पे फैसला किया था नेशनलाइजेशन का, ऐसा ही ये बड़ा इकदाम जो है चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल इसके जवाब में कोई फौजी कार्रवाई करने की जरूरत करेगा, क्योंकि वो कितने महाजों पे जंग लड़ सकता है इसराइल, अब तो उसकी अपनी बका का मामला है, और अब वो दौर गुजर चुका, अब ईरान वो ईरान नहीं है, मिस्र भी बदल चुका है, दुनिया सारी तब्दील हो चुकी है, अब इसराइल के लिए अपनी मनमानी करना और 6 डे वार की तारीख दोहराना ये बिल्कुल नामुमकिन है, मैं नहीं समझता। और मेरा अपना ख्याल है कि चंद दिनों में या चंद हफ्तों में मोहम्मद मुर्सी ये फैसला जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने फौज तैनात कर दी है सराय सीना में, तो पहला कदम तो उन्होंने उठा लिया है, अब तो अगला कदम होगा कि एक बाजाबता तौर पर कैम्प डेविड, क्योंकि कैम्प डेविड भी एक मशरूत माहदा था, बज़ाहिर इसराइल पाबंद था कि कुछ ऐसे इकदाम करे जिससे 1967 की सरहदों की तरफ वापसी की कोई सूरत निकले, उन शिकों को बिल्कुल टोटली फरामोश कर दिया गया
जी।
और इन्होंने जो प्रोसेस, पीस प्रोसेस शुरू किया था ओस्लो का, उससे भी बहुत पीछे हट गए, और अब तो वक्त आ गया है कि किसी न किसी ताकत को, लेट इट बी इजिप्ट, इजिप्ट जो है उसे ललकारना चाहिए इसराइल को।
बहुत शुक्रिया साहिद साहब। आप देखें कि एक ऐसे वक्त जब कल का जो मुजाहरा हुआ, जो फसादात में और पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत एक तरह से साजिश में तब्दील हो गया, तो उसका बहाना बनाया गया था कि तवानाई और ईंधन का बहरान। तो एक ऐसे वक्त जब मिस्र की हुकूमत, जो साबिका हुकूमत थी, इंतहाई सस्ते दामों पर अपनी गैस इसराइल को सप्लाई कर रही थी और अब खुद मिस्र के अंदर तवानाई का बहरान है। तो अब अगर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत बजा तौर पर, जायज तौर पर, जो कि मिस्र अवाम का हुकूमत है का हक है, इसराइल को गैस की सप्लाई बंद करके अपने ही अवाम की खिदमत में उसे पेश करे, तो दूसरी तरफ का रुख आप कैसे देखते हैं कि इसराइल में माशी कैफियत और सूरत हाल क्या होगी अगर मिस्र की हुकूमत जो है वो गैस सप्लाई बंद कर देती है? तो
देखिए, तवानाई का जो बहरान है वो तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो देखने में आ रहा है और उससे तकरीबन कमोबेश एक बड़ी तादाद जो है वो दो चार है, हत्ता यूरोपीय और अमरीकी ममालिक भी जो हैं वहाँ पर भी जो है इस किस्म के मसाइल और मुश्किलात हैं और इनको बहाना बनाकर मिस्री हुकूमत के खिलाफ, जैसे कि गुलाम अकबर साहब ने भी अपने गुफ्तगू में इशारा किया कि मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत को आए हुए या नई हुकूमत को या नए सेटअप को बने हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो ये बहरान इनका पैदा करता तो नहीं है। ये बहरान जो है अगर या कमी है या मुश्किलात हैं इस सिलसिले में, तो ये तो पिछली 30-35 बरसों से जो हुकूमत या निज़ाम जो था ये तो उसका किया धरा है, उसका नतीजा है कि आज जो है वो ये आज एक दिन में तो बहरान पैदा नहीं हुआ अगर बहरान है। और जहां तक आपके इस बात का ताल्लुक है कि अगर मिस्र जो है वो इसराइल को गैस की सप्लाई को बंद करके और अपने मुल्क के अवाम की और अपने अवाम की उस पर जो सर्व करे, तो यकीनन ये जो है वो एक जरूरी और मैं समझता हूं कि बुनियादी इकदाम होगा और जो सस्ते दामों जो अगर गैस की सप्लाई जो इसराइल को जा रही है कि जो मुसलमानों का, जो मिस्रियों का, जो उसके पड़ोस में बैठे फलस्तीनियों का कट्टर दुश्मन है और जिनकी हर चीज जो है इस बुनियाद पर उस्तवार है कि वो आलम इस्लाम को, मुस्लिम दुनिया को जो है वो निस्तो नाबूद करें और नील से फुरात तक जो है वो कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद और हिमायत करना, उनके साथ ताउन करना ना अकलन जायज़ है ना शरण जायज है और दुनिया भी जो तौर तरीके हैं उसमें भी जो है वो दुश्मन की इस तरीके से हिमायत और मदद करना जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता किसी भी अकल सलीम के लिए। मगर ये कि वो मगरिब नवाज हो, वो पिट्ठू हो, वो जो है दुश्मन का एजेंट हो, तो मिस्री हुकूमत जो है उसको ये काम कर लेना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि दुश्मन के हाथ में या उन कुव्वतों के हाथ में जो इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं और दुश्मन के लिए या उनके आलेकार बन सकते हैं, उनके बहाना कम से कम जो है वो खत्म या कम हो।
गुलाम अकबर साहब, कहा यह जा रहा है बहुत से मुबस्सिन, हत्ता मगरबी इजराए ब्लाग और मगरबी न्यूज एजेंसियां इस बात को इस अंदाज में ताबीर करें कि मोहम्मद मुर्सी का दौरे तेहरान जो आइंदा दो तीन दिनों बाद अंजाम पाने वाला है नवाबस्ता तहरीक के इजलास में शिरकत के ताल्लुक से, तो इस दौरे को इसराइल के लिए सियासी जलजले से ताबीर किया गया है मगरबी न्यूज एजेंसियों, जराए ब्लाग और सियासी हलकों में। तो बहुत से मुबस्सिरीन इन्हीं तबसरों के ज़ेल में ये भी कह रहे हैं कि कल का जो वाकया हुआ है मिस्र में वो शायद इसीलिए कि मोहम्मद मुर्सी को दौरे तेहरान से रोका जाए और उनको दाखिली मसाइल में उलझा कर रख दिया जाए ताकि वो तेहरान का दौरा ना करने पाए, तो क्या ये भी एक इम्कान हो सकता है आपके ख्याल में?
ये यकीनी तौर पर ऐसी ख्वाहिश तो उनकी यकीनन होगी और मैं समझता हूं कि ये तवानाई के बहरान को हुकूमत को वो स्टेबल होने नहीं देंगे। देखें, जब भी उनके पास यही एक ऑप्शन है कि उन्हें एक इशू मिल गया है, तवानाई का बहरान जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि सारी दुनिया में है, तवानाई का सबसे बड़ा बहरान तो खुद अमेरिका में है और यानी जिसका दुनिया को इलम नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका गुर्बत में डूबने वाला है और डूब रहा है। इस दफ़ा जो इलेक्शन है उसमें बड़ा इशू ही इकोनॉमी है, तो ये तो एक हुकूमत जिसको जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए वो इन मसाइल कैसे हल करे, लेकिन एक साजिश बहरहाल है, लेकिन ये साजिश मुझे यकीन है अब कामयाब नहीं होगी क्योंकि इस वक्त कोई भी अगर कोशिश की गई इसको डिस्टेबलाइज करने की हुकूमत को तो मोहम्मद मुर्सी के, क्यों इन्हें लेकिन बड़ा फोर्सफुली एक्ट करना है, जैसा मैंने कहा कि इन्हें किसी भी तरह अब पीछे नहीं हटना, जितनी दिलेरी उन्होंने फौजी क्यादत को हटाने में दिखाई है, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना फर्स्ट स्ट्राइक का हक इतनी दिलेरी और इतनी फुर्ती से इस्तेमाल करेंगे, तो अब भी मैं समझता हूं कि उन्हें जाना चाहिए और अपनी पोजीशन इसी तरह वो नेशनल हीरो बनेंगे। इस किनके खिलाफ जो है मोहम्मद मुर्शी साहब के एक आर्गूमेंट जाता था, वेस्ट ने भी उसको बहुत प्रोजेक्ट किया कि इनकी शख्सियत कैरिस्मेटिक नहीं है, लेकिन ईरान के इनकलाब की एक बहुत प्लस पॉइंट था कि उसके जो बानी थे वो बहुत कैरिस्मेटिक शख्सियत थे और शायद तारीख में बहुत कम इतनी कैरिस्मेटिक शख्सियात गुजरी हैं। मैं खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं,
जी जी
तो ये एक प्लस पॉइंट ईरान को था, मिस्र को वो हासिल नहीं है। लेकिन बाज लोग अपने इकदाम से, अपनी दिलेरी से, अपने फैसलों से अपने आप को हीरो बना दिया करते हैं, और मेरे ख्याल में तारीख के मौका मोहम्मद मुर्सी को दे रही है। वो ईरान जाए
आपका,
और अपनी आजादी का, मिस्र की आजादी का ऐलान करें।
बहुत शुक्रिया आपका
आजादी का ऐलान।
उलाग भाई साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, और यही अब्न जकरिया साहब से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी न रह सके उनसे माजरत चाहते हैं। साजिद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। इस वक्त इसराइल को जो सबसे ज्यादा खौफ तशवीश लाहक है, वो इस बात से है कि अब वो इलाकाई सतह पर अलग थलग पड़ता जा रहा है, और वो इसराइल जो अपने को नाकाबिल शिकस्त तस्वर कर रहा था, अब उसके हुकाम खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि लगता यह है कि चारों तरफ से वो घिरते जा रहे हैं, और अगर शाम में भी वो कामयाब ना हो सके तो उसकी नाबूदी जो है वो करीब से करीब तर हो जाएगी, और इसीलिए मोहम्मद मुर्सी को तेहरान आने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। लेकिन मोहम्मद मुर्सी का जब दौरा तेहरान होगा तो खुद मगरबी ज़राए इब्लाग के बकौल ये सियासी जलजला होगा इसराइल के अंदर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।